साक्षी के कहने पर मंथन राइशा को लेने के लिए उसकी शूटिंग लोकेशन पर आया हुआ था। राइशा को अनुष्का की मूवी मिली हुई थी और वो जिस सीन को सूट पहन रही थी इसकी रिहर्सल मंथन पहले ही अनुष्का के साथ कर चुका था। सीन को देखते ही मंथन को अनुष्का की याद आ गई और वो अपनी गाड़ी में आ गया। उस सीन के डायलॉग देखते ही मंथन को वो दिन याद आ गया जब उसने अनुष्का के साथ रिहर्सल किया था। वो अपनी यादों में खोया हुआ था, तभी राइशा गुस्से में उसके पास आई और गाड़ी की विंडो को खटखटाया। मंथन ने विंडो डाउन की और फिर राइशा की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ जो यहाँ बैठकर तुम्हारा वेट करूँ। साक्षी दी के कहने पर यहाँ पर आ गया था, लेकिन मुझे देर हो रही है, आना है तो आओ वरना मैं जा रहा हूँ। मंथन राइशा से काफ़ी रूखे तरीके से बात कर रहा था। राइशा ने आँखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। उसकी कुछ हरकतें बिल्कुल अनु की तरह थीं। गुस्सा होने पर अनुष्का भी मंथन की तरह ऐसे ही देखा करती थी। राइशा ने भी उसी तरीके से मंथन को देखा और फिर कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम्हें जो काम मिला है वो तो तुम्हें करना ही होगा। मेरी शूटिंग 2 घंटे और चलने वाली है, तब तक यहीं बैठकर वेट करो, वहां मत आना। अच्छा खासा सीन चल रहा था, सब कुछ परफेक्टली जा रहा था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। क्या जरूरत थी वहां इतनी जोर से चिल्लाने की? राइशा मंथन को डांटने लगी। मंथन ने उसे कुछ नहीं कहा, उसने राइशा को हाथ के इशारे से वहां से जाने को कहा। उसकी हरकत पर राइशा को और गुस्सा आ गया। वो सिर हिलाकर बोली, तुम ना जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं किसी और के साथ आ जाऊंगी। मंथन वहां से जाने को हुआ तभी उसे याद आया कि पिछली बार राइशा अकेली थी तब उसके साथ क्या हुआ था। अयान ने साक्षी को बताया तो साक्षी ने ये सब मंथन के साथ शेयर किया था। राइशा की उम्र ज्यादा नहीं थी और ये सब उसके लिए नया था, इसलिए मंथन ने खुद को शांत किया और राइशा से कहा, अच्छा ठीक है, जाकर अपना शूट कंप्लीट करो, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, और ज़्यादा टाइम मत लगाना। हाँ अब ठीक है, तुम इसी तरह अच्छे से बात क्यों नहीं करते, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड लेकर घूमते हो, राइशा ने जवाब दिया और फिर वहाँ से चली गई। अनुष्का की मूवी में काम करने की वजह से उसने उसकी काफ़ी सारी मूवीज़ देखी थी और उसके बोलने का, चलने का और हर एक छोटी चीज़ कॉपी करने की कोशिश की थी। उसकी हरकतें मंथन को अनुष्का की याद दिला रही थी। उसके जाते ही मंथन ने धीरे से कहा, तभी मुझे इस इंडस्ट्री से नफरत है, उसके जैसा बनने की कोशिश कर रही है पर कभी बन नहीं पाएगी। जो भी हो, इसकी हरकतें मुझे अनु की याद दिला रही हैं और मुझे और तकलीफ महसूस हो रही है। साक्षी दी को सब कुछ अच्छे से पता था, फिर भी उन्होंने मुझे इस लाने के लिए भेजा। मंथन गाड़ी की स्टीयरिंग पर अपना सिर टिकाकर नम आंखों से अनु को याद कर रहा था, वही राइशा को इस बारे में पता नहीं था। दूसरी तरफ आरव आयु को लेकर घर पहुंचा। पूरे रास्ते आरव ने एक बार भी आयु से ठीक से बात नहीं की। आयु सब ठीक करने की कोशिश करती भी तो आरव उसे किसी न किसी चीज़ को लेकर डांटने लगता। घर पहुंचते ही आरव ने गाड़ी पार्क की और अंदर जाने लगा। आयु उसके पीछे धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। आरव गुस्से में था, इसलिए वो अपने रूम में जाने के बजाय गौरवी जी के पास गया। गौरवी जी को कुकिंग का शौक था। इस वक्त वो किचन में कुछ स्पेशल बना रही थी। उनके आसपास कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने आरव को अपने पास देखा, गौरवी जी ने जल्दी से सारा सामान छोड़ दिया। वो जानती थीं कि आरव को बिल्कुल पसंद नहीं था जब गौरवी जी किचन में आकर काम करती थी। आरव को देखते ही गौरवी जी हड़बड़ाकर बोली, मैं बस अपने लिए जूस बना रही थी, स्टाफ कुछ देर में आने ही वाला है। गौरवी जी आरव को सफाई देने की कोशिश कर रही थी, तभी आरव उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, दादी मुझे किसी चीज़ की सफाई मत दीजिए, आप अच्छे से जानती हैं जब आप झूठ बोलती हैं तो मैं पकड़ लेता हूँ। मैंने आपको मना किया था कि आप कोई काम नहीं करेंगी, फिर आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? इस घर में काम करने वाला स्टाफ कम पड़ गया है या उन्हें कोई दूसरी जॉब मिल गई है जो वो छोड़कर चले गए हैं? आरव गौरवी जी को भी डांटने लगा। उसके लहजे को देखकर वो समझ गई थी कि आरव गुस्से में है। अच्छा ठीक है, आगे से नहीं करूँगी, गौरवी जी ने मामले को शांत करते हुए कहा। वो आरव से बहस नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब उसका मूड इतना उखड़ा हुआ था। आयु भी उसके पीछे वहाँ पहुँच चुकी थी। वैसे भी आरव के चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। आयु को वहाँ देखते ही आरव ने गौरवी जी से कहा, जिसे जो करना है शौक से करो, वैसे भी यहाँ मेरी कौन सुनता है, आपको भी अपनी मनमानी करनी होती है और इसे भी। दादी आप ऐसा कीजिए कि आज का डिनर आप ही बना लीजिए, और तुम आयु ऐसा करो ड्राइवर को लेकर। नहीं, ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो गाड़ी चलानी आती है, खुद ही ड्राइव करके हॉस्पिटल चली जाओ, मैं मिस्टर कपूर से बात कर लेता हूँ, वो अब से तुम्हारी ड्यूटी टाइम बढ़ा देगा। गौरवी जी और आयु दोनों ने ही कुछ नहीं कहा। वो जानती थीं कि इस वक्त आरव को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। उन दोनों को चुप देखकर आरव और चिढ़ गया और फिर वहां से अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही आयु ने लाचारी से गौरवी जी की तरफ देखा और फिर कहा, इसका मूड बहुत खराब है। हाँ दिख रहा है मुझे, गौरवी जी ने जवाब देते हुए कहा। जब इसका मूड खराब होता है तो इसका बस चले तो पूरी दुनिया का मूड खराब कर दे, बहुत किचकिच करने लगा है, पर यह गुस्सा किस बात को लेकर है, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया, बोलते हुए गौरवी जी उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। आयु झट से बोली, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, पूरे रास्ते मुझे भी डांटते हुए आ रहा था, इनफैक्ट इसने तो मेरी जॉब तक छुड़वा दी। दादी प्लीज आप इससे बात कीजिए ना, मैं रेस्ट भी कर रही हूँ और बाकी चीजों का भी ध्यान रख रही हूँ, फिर सारा दिन घर पर रहने से कौन सा ज्यादा फिट हो जाऊंगी, गौरवी जी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है आयु, तुम्हारे मिस्टर खुराना इतनी आसानी से बात को मानने वाले लगते हैं? सॉरी, बस यहाँ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। आरव ने भी अपनी जिद छोड़कर तुम्हें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए हामी भरती है, तो तुम्हें थोड़े दिनों के लिए अपनी जॉब की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आरव के आगे गौरवी जी ने भी हथियार डाल दिए थे। आयु लाचारी से उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि वो भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। वो चुपचाप आरव के पास जाने लगी। तभी गौरवी जी ने पीछे से पूछा, वैसे रीजन क्या है उसके मूड खराब होने का? उसके बेसिस पर ही बता सकती हूँ कि मूड कैसे ठीक होगा, फिलहाल उससे दूर रहो तो ज्यादा सही रहेगा। आयु ने गौरवी जी की तरफ देखा, वो कन्फ्यूज हो रही थी कि छवि और आरव के बीच जो भी हुआ उस बारे में उन्हें बताएं या नहीं। वहीं गौरवी जी बार बार उससे पूछे जा रही थीं। आरव की तरह गौरवी जी छवि से नफरत करती थीं। ऐसे में उन्हें पता चला कि आरव छवि के लिए हॉस्पिटल गया था, तो बखेड़ा खड़ा हो जाना था। आयु आरव के साथ घर आ चुकी थी। आरव का मूड काफी उखड़ा हुआ था। घर आने के बाद पहले उसने गौरवी जी को डांटा और फिर आयु को भी दो बातें सुनाने के बाद वो अपने कमरे में चला गया था। आरव के जाने के बाद गौरवी जी ने आयु से उसके गुस्से की वजह पूछी। आयु असमंजस की स्थिति में थी कि आज हॉस्पिटल में जो भी हुआ वो उस बारे में गौरवी जी को बताएं या नहीं। आयु वहां खड़ी सोच रही थी तो गौरवी जी ने एक बार फिर पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आयु, आरव को इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है?
कुछ नहीं दादी, वो मिस्टर कपूर की वजह से उसका मूड उखड़ा हुआ है, आयु ने सच छुपाते हुए कहा। अगर वो ज्यादा देर रुकती तो गौरवी जी उससे और सवाल पूछती, इसलिए आयु ने जाते हुए कहा, दादी मैं आरव के पास जा रही हूँ, वो और गुस्सा हो जाएगा अगर मैं नहीं गई तो। गौरवी जी ने उसकी बात पर हामी भरी। आयु तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही गौरवी जी ने धीरे से कहा, मिस्टर कपूर का गुस्सा इस तरह आरव कभी मुझ पर नहीं उतारता है, बात जरूर बड़ी है जो दोनों ही बताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बता ही देंगे। गौरवी जी ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगी। वहीं गौरवी जी को टालकर आयु ऊपर कमरे में आई। उसे अंदर जाते हुए डर लग रहा था। अंदर जाने से पहले आयु ने धीरे से कहा, दादी से तो बहाना बनाकर आ गई, लेकिन अब इससे कैसे निपटूं? अंदर जाते ही फिर से शुरू हो जाएगा। आयु दरवाजे के पास खड़ी थी, तभी आरव ने उसके लिए गेट खोला और अंदर आने का इशारा किया। आयु के अंदर आते ही आरव ने कहा, दादी को तो कुछ नहीं बताया है ना? अभी तक तो नहीं बताया है, पर कभी ना कभी उन्हें पता चल ही जाएगा, आयु ने जवाब दिया और फिर बेड पर आकर बैठ गई। वो कुछ दवाइयां ले रही थी। आरव ने आयु की तरफ देखकर कहा, आगे से तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी और ना ही उस औरत की कोई हेल्थ अपडेट लोगी। मैं भी हॉस्पिटल नहीं जाने वाला हूँ, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आरव का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। आयु उठकर उसके पास गई और आरव को हक कर लिया। वो उसे धीरे से सहलाते हुए बोली, इतनी नफरत क्यों करते हो तुम उनसे? आज तक नहीं बताया है? पहले अक्सर कहते थे कि शादी कर लो, फिर सारे राज जान जाओगी, तुम अपने बारे में कभी कुछ बताते ही नहीं हो। उसकी बात सुनकर आयु आयु से अलग हुआ और फिर सिर हिलाकर कहा, तुम्हें मुझसे प्यार होना चाहिए, ना कि मेरे पास्ट से। मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा, तो तुम भी मत पूछो, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं, जब मैं इतना ज्यादा गुस्से में हूँ। प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल जाने दो, आयु ने प्लीडिंग वे में कहा। आरव ने सीधे सीधे नामे सिर हिलाते हुए कहा, जिद मत करो मिसेस खुराना, मैं अपनी जिद पर आ गया तो तुम झेल नहीं पाओगी। आरव की बात सुनकर आयु का मुंह बन गया। वो आरव से दूर जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। वहीं आरव आयु को छोड़कर ऊपर ऑफिस एरिया में आ गया था। वहां बार काउंटर बना हुआ था और आरव वहां बैठकर ड्रिंक किए जा रहा था। आरव की आंखों के सामने बार बार छवि का चेहरा आ रहा था। उसने सर्द आवाज में कहा, अब तो तुम मर भी जाओ छवि सिंघानिया, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को इन्वॉल्व करने की? उन्हें चीट तुमने किया, वो भी किसी और शख्स के लिए। हमेशा उन्हें धोखे में रखा कि उनके पास वापस लौट आओगी, लेकिन दूसरे इंसान के बच्चे पैदा करने में लग गई। नफरत है मुझे तुमसे छवि सिंघानिया, तुम मेरी मॉम हो ही नहीं सकती। छवि की यादें अपने दिल से निकालने के लिए आरव लगातार ड्रिंक किए जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ छवि को होश आ चुका था। उसके कुछ टेस्ट ऐसे होने थे जिसके लिए उसे बेहोश किया जाना जरूरी था। छवि को होश आते ही वो जोर से चिल्लाई। छवि रोते हुए चिल्लाकर बोली, आरव, मेरा आरव कहाँ है? उसे बोलो मेरे पास आकर बैठे, मुझे उसके बिना नहीं रहना है। अयान वहीं पर मौजूद था। छवि के चिल्लाने पर वो दौड़ कर आया। छवि इस वक्त आरव को अपने पास चाहती थी, लेकिन उसके बर्ताव के बाद अयान अच्छे से जानता था कि आरव कभी छवि के पास नहीं आएगा। अयान ने उसे सहलाते हुए कहा, मैंने आपको बताया था ना, आयु प्रेग्नेंट है, उसे रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए भाई उसे घर लेकर गए हैं। कल सुबह तक वो वापस आ जाएंगे। आप तब तक आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को मंगवा देता हूँ। छवि ने अयान की बात पर हाँ में सिर हिलाया। वो काफी देर तक चुप रही, फिर अचानक उसने अयान से कहा, रायशा, रायशा कहाँ है? अयान, उसे बोलो कि मेरे पास आकर रहे। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिनों तक जी पाऊंगी। मुझे आरव से बात करनी है, उसे कुछ बताना है। इनफैक्ट तुम तीनों को कुछ बताना है। आप ज्यादा सोच रही हैं मॉम, आपको कुछ नहीं होगा। रायशा अपनी शूटिंग में बिजी है, कल तक आ जाएगी और भाई को भी बोल दूंगा। प्लीज आप शांत हो जाइए, इस तरह एग्रेसिव होना आपके लिए सही नहीं है। अयान ने जैसे तैसे करके छवि को चुप करवाया, उसे उसकी बहुत परवाह हो रही थी। छवि को लिटाने के बाद अयान दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। वो आरव को कॉल करके यहाँ बुलाना चाहता था, लेकिन आज जो भी हुआ था उसके बाद वो अच्छे से जानता था कि आरव नहीं आएगा। आरव से डायरेक्ट बात करने के बजाय उसने आयू से बात करना सही समझा। अयान ने आयू को कॉल किया। अयान ने कॉल पर कहा, प्लीज तुम उन्हें समझाओ, मॉम बार बार उनके बारे में पूछ रही हैं। एक बार ये सोचकर ही तसल्ली कर लें कि मॉम की तबीयत खराब है, इसलिए वो कुछ भी कह देती हैं। प्लीज उन्हें बोलो कि वो यहाँ आ जाए। अयान काफी रिक्वेस्टिंग वे में बात कर रहा था। पूरी बात सुनने के बाद आयू ने कहा, देखो मुझसे कुछ मत कहो, तुम्हारे भाई का गुस्सा मुझसे नहीं झेला जाता। जब से हॉस्पिटल से घर आया है सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अभी पता नहीं कहाँ चला गया, पिछले 2 घंटे से गायब है और फोन भी नहीं उठा रहा। अयान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, अगर घर के बाहर नहीं गए हैं तो खुराना मेंशन के बार एरिया में जाकर देखो, वहीं कहीं बैठकर ड्रिंक कर रहे होंगे। इसका मतलब साफ है कि अंदर ही अंदर उन्हें भी तकलीफ हो रही है और किसी को बता नहीं रहे। यहाँ उनकी शिकायतें लगाने के बजाय जाकर उन्हें संभालो। अयान ने इतना ही कहा और फिर कॉल कट कर दिया। तो वहीं आयू भी हड़बड़ाकर उठी। अब तक वो आरव से नाराज थी, लेकिन अयान की बात सुनकर वो आरव को ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगी।